तो आज के श्रीमद् भागवत क्लास में उपस्थित सारे भक्तों का तहे दिल स्वागत करता हूं। तो ये जो प्रसंग चालू है, जैसे 16 से 26 तक जो सत्यव्रत राजा रहते हैं वो मछली के इस तरह प्रकार बढ़ाने में एकदम विस्मय हो जाती है, और बाद में 27 से लेकर 30 तक वो फिर प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं तो हम ये देखेंगे थोड़ा, कि जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि राजा जब अपनी तपस्या कर रहा था तो उस वक्त वो जल पीने के लिए नदी के पास गया, तो वहां उसने अपने, मराठी में अंजलि बोलते ना, अंजलि मतलब अपने हाथों में उसने थोड़ा जल लिया पीने के लिए। उसी वक्त एक मछली आई उनके हाथों में, तो फिर राजा ने फिर से वो मछली को छोड़ दिया। तो फिर मछली ने बोला कि आप मुझे ऐसे क्यों छोड़ रहे हो, तो मैं इतने बड़े प्राणी है, इसके अंदर सब जलचर है, मैं वो खा लेंगे, मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे। तो राजा क्या करता है, दयावश उस मछली को लेकर एक बड़े पात्र में डाल देता है। तो बड़े पात्र में डालने के बाद, मतलब एक छोटा सा पात्र डाल देता है, मतलब छोटा छोटी मछली समझ कर, तो कुछ ही क्षणों में वो मछली अपना शरीर का विस्तार और बढ़ा देती है। तो बढ़ाने के बाद राजा को बोलती है कि मैं, ये पात्र मेरे लिए कम पड़ रहा है, मुझे और थोड़ा बड़ा पात्र चाहिए। तो राजा उससे क्या, उससे बड़ा पात्र लेता है, बड़ा पात्र लेता है, उसमें मछली को डाल देता है। तो मछली ऐसे और बड़ा शरीर प्राप्त कर लेती है। तो इससे देखते हैं कि धीरे धीरे फिर वो कुएं में, फिर नदी में, फिर बड़ा जलाशय में, आखिरी में समुन्द्र में डाल देता है। इस तरह ये 16 से लेके 26 तक राजा ने इस तरह ये मछली के साथ आदान प्रदान किया। तो बाद में जब राजा को पता चला कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं है, ये जरूर कोई एक अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत जीव रहेगा, तो उस वक्त राजा ने क्या किया, उस शरणागत हो गया। तो शरणागत होने के बाद तो प्रार्थना शुरू कर दी, तो क्योंकि उसे उस वक्त उतनी बुद्धि आ गई, क्योंकि राजा भक्त था, तो उसने सोचा कि यह साधारण प्राणी का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि एक ही दिन में इतने शरीर बड़ा तुरंत करने और फिर बाद में आखिरी समुन्द्र में भी डालने के बाद फिर भी वो समुन्द्र कम पड़ रहा उसके लिए। तो उस वक्त राजा क्या, पूरा शरणागत हो गया। शरणागत होने के बाद प्रार्थना करने लग गया कि आप मुझे बताइए कि आखिर में आप हो कौन। तो उस वक्त भगवान अपना स्वरूप प्रकट करते राजा के सामने और फिर बताते कि आगे का प्रयोजन क्या। तो इसी तरह हम देखते हैं कि, तो इस बीच में हम ये देखते हैं कि राजा क्या सोच रहा था, कि उस वक्त उसे पता नहीं था कि ये भगवान है। तो राजा क्या सोच रहा था कि मैं इस मछली, इस जीव के इच्छा पूरी कर रहा हूं, इसे सुविधा प्रदान कर रहा हूं कि जिससे ये और इसके आनंद मिले, तृप्त होए। लेकिन कैसे कि वो मछली जैसे बढ़ती गई तो राजा भी एकदम अचंभित होते गया, क्योंकि वो सोचने लगा कि मैं, राजा इतना बड़ा, एक जीव को मैं, पूरे इतने जीव मेरे आश्रित हैं, मैं उनको संरक्षण दे रहा हूं, लेकिन ये एक जीव है कि बढ़ाए, अपना शरीर बढ़ाते जा रहे। लेकिन जब उसे पता चला कि हाँ ये ऐसा नहीं है, कि तो राजा को ज्ञात हुआ कि मैं जो कर रहा हूं इससे ये जीव जो है तृप्त नहीं होने वाला। जब आखिरी में उसे पता लगता है कि नहीं, ये भगवान है साक्षात, तो उस वक्त और शरणागत हो जाता है। तो इसे शरणागत होने के बाद स्तुति करने लगता है। लेकिन इसी तरह हम ये देखते हैं कि मछली, ये तो वह इस उदाहरण से, इस लीला से हमें क्या सीखने मिलता है कि जीव क्या करते हैं इस दुनिया में, भगवान की सेवा करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद वो क्या सोचते हैं कि हम भगवान पे कृपा कर, मतलब एक तरह से उन पे आभार कर रहे हैं, मराठी में बोलते आभार कर रहे एक कि जिससे कि हम सेवा नहीं करेंगे तो भगवान को ऑफरिंग कौन लगाएगा, कैसे होगा सब कुछ, कैसे कुकिंग, अगर कुकिंग है तो भगवान खाएंगे क्या, फिर उनके मतलब देखभाल नहीं करेंगे तो कैसे रहेगा। तो इस राजा, इस मछली की कथा से हमें यह सीखने मिलता है कि आप कितनी भी कोशिश करो, कुछ भी करो, आप मुझे तृप्त नहीं कर सकते। तो इससे से हमें देखते हैं कि भक्ति यही है भक्ति का स्वभाव। भक्ति का स्वभाव कैसे है, स्थाई नहीं है, उसका विस्तार होते रहता है। जिस तरह भगवान ने मछली के इस रूप में, इस अवतार लीला में, तो भगवान ने क्या, बढ़ते गए, धीरे धीरे वो बढ़ते गया। तो बाद में आखिरी में राजा को शरणागत होने पर, इसी तरह हमें भी, हमारे भी जो दिन भर जी सेवा करते रहते हैं उससे हमें क्या करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उपकार कर रहा हूं या भगवान पे, या फिर बहुत बड़ा मेरे सेवा करने से भगवान को इतनी सेवा मिल रही है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। उल्टा ये इससे क्या सोचना चाहिए हमें, भगवान को शरणागत जाकर हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान हमारे पे कृपा कर रहे हैं सेवा देकर। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैं भगवान को कृपा कर रहा हूं भगवान की सेवा करके, तो ये बद्धजीव के लक्षण है। जो इस तरह सोचता है कि मैं मंदिर में रहता हूं या मंदिर में आकर सेवा करता हूं, तो ये सपड़े ये इसे बदात्मा कहा गया, क्योंकि भगवान हमें सेवा देते हैं। और जब भगवान अगर हम पूरे प्रेममय से अच्छे से भगवान की जितनी सेवा करेंगे, उतना भगवान हमें उस भक्त को उतनी और सेवा देंगे। इससे क्या होता है कि भगवान क्या कर चाहते हैं कि जैसे राजा के साथ भगवान ने किया कि उसे एक जलाशय छोटे बड़े करते करते, मतलब भगवान उस राजा को सेवा दे रहे थे, धीरे धीरे सेवा बढ़ाते जा रहे थे। उसकी सेवा बढ़ाने के बाद क्या हो रहा था कि राजा को और से और सेवा, क्योंकि राजा का उत्साह और बढ़ रहा था कि नहीं इसमें संतुष्ट नहीं होगी, और थोड़े देंगे और थोड़े देंगे। इससे क्या है, भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान होता है। भगवान क्या करते हैं कि जो भक्तों को ज्यादा, जो भक्त भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं और अच्छे से दिल लगाकर सेवा करते हैं, भगवान उसको और उतनी सेवा देते हैं जिससे कि वो उनके और करीब आए। इसी से राजा ने जब, और बाद में भगवान ने क्या किया, राजा को अपने आप को प्रकट किया उसके सामने। प्रकट क्यों किया, क्योंकि राजा भगवान को शरणागत हो गया, उस जीव को शरणागत हो गया पूरी तरह, ताकि आखिर में हारे राजा ने हाथ जोड़ लिए, बोले कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं आपसे शरणागत आता हूं, आप कृपा करके मुझे बताइए कि आप कौन है। तो ये करने के बाद तो भगवान ने उन्हें, और फिर आगे की क्या स्टोरी है, कथा है कि आगे मछली के रूप में आने का कारण क्या है, तो आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। तो ये करने के बाद देखते हैं कि भगवान उस राजा के ऊपर प्रसन्न होने के बाद फिर राजा ने, भगवान ने आगे का कार्य बताया। तो हम हमारे जीवन में हम देखते हैं कि अगर हम भगवान की सेवा प्रेम से करते हैं तो भगवान के हम करीब जाते हैं, भगवान हमें अपनी तरफ खींचने के लिए हमें सेवा देते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हम सेवा करेंगे इतने ही करेंगे, ज्यादा नहीं होगा, तो उससे क्या होता है कि भगवान बोलेंगे ये बेकार व्यक्ति है, भक्ति के नाम पे ये सेवा कर रहा है लेकिन वो दिखावे के लिए करता है, तो इसलिए वो सेवा ज्यादा भगवान उसको देते नहीं है, तो वो उतने ही, मतलब जितना करता है उतना ही है। तो एक तरह से हमें ये सोचना चाहिए कि जब भी हम, अगर चाहे वो आश्रम में हो या बाहर हो, हम जब भी हम ये सोचना चाहिए कि जो सेवा का अर्थ क्या है, कि जो भी सेवा हमें बोर्ड पे लिखी जाती है या जो भी हमें सेवा बताई जाती है वो एक्चुअली सेवा है ही नहीं, क्योंकि जो बोले हमें बोल के बोलता है कि ये सेवा करनी है, एक्चुअली वो हम सेवा करते नहीं है। जो बिना बताए हुए अगर हमारे इच्छा से, हमारे मन से अगर हम जो सेवा करते हैं, जो हमें कोई बोलता नहीं है कि नहीं तुम ये करो, आप ये सेवा करो, ये करो, जब तक हमें कोई नहीं, अगर हमारी इच्छा से हम अगर जो कोई भी सेवा करते हैं तो वो प्रेममय सेवा हो जाती है, क्योंकि वो सेवा हमारे अंदर से आती है, क्योंकि हमें इच्छा होती है कि हाँ ये सेवा मुझे करनी चाहिए भगवान के लिए। वो सेवा जो रहती है उसमें अगर हमारे नाम बोर्ड पे आ गया या ऐसे हमने वो सेवा की, तो मतलब क्या, हमने ये सेवा की, भगवान ने हमें ये दिया, मतलब ये आदान प्रदान, मतलब वो जैसे राशन दुकान वाले रहते ना कि आपने उसको पैसे दिए तो उसके जगह पे हमें मिल गया, ये उस तरह का सेवा हो गया, मतलब भगवान के साथ इस तरह का आदान प्रदान है। लेकिन जो बिना अपने मन से और प्रेम से की हुई सेवा जो रहती है ना, बिना किसकी बताए के, वो सेवा असली में प्रेममय सेवा होती, मतलब हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान को पूरी तरह शरणागत होकर भगवान की सेवा करेंगे, उस वक्त भगवान उस भक्त को साथ आदान प्रदान करते, और वो आदान प्रदान किस तरह करते, उस भक्त को और सेवा देते। अभी सेवा देने का तरीका बोले तो क्या, एक फिजिकल सेवा है और एक मेंटल मानसिक सेवा है। फिजिकल सेवा जैसे हम कृष्ण भावना में आते हैं तो आने का देखते कि हमारी सेवा धीरे धीरे बढ़ते जाती है, ऐसे कम नहीं है, क्योंकि भक्ति कृष्ण भावना कैसे है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, वो बढ़ती जाती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसलिए शुरुआत में हम जहां आते हैं तो हमें फिजिकल सेवा दी जाती है। फिजिकल सेवा क्यों दी जाती है, क्योंकि बद्ध जीव होने के कारण अगर हमारी स्वास्थ्य उतना, अगर हम फिजिकल सेवा जितनी करेंगे उससे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों फायदे होते हैं। भौतिक कैसे होता है, क्योंकि हमारी सेवा, शरीर भी स्वस्थ रहता है और साथ में भगवान की सेवा भी हो जाती है, और साथ में कैसे कहें, इसी तरह हमें भगवान के करीब जाने की मौका मिलता है। फिजिकल सेवा के भी कुछ ऐसे हैं। फिर और थोड़ा जीव भक्त जब भी और पुराना होते बढ़ते जाता है भक्ति में, तो उसे फिजिकल सेवा प्लस मेंटल सेवा देते हैं, मानसिक सेवा देते हैं। तो उसमें कैसे रहता है, फिजिकल सेवा तो करता ही करता है, उसमें वो निपुण हो जाता है, तो बाद में मानसिक सेवा जो आ जाती है, तो उसमें वो फिजिकल सेवा के साथ मानसिक सेवा को जोड़ने के बाद तो अपने मन को भी स्थिर करने लगता है जिस तरह। और फिर बाद में आखिरी में कैसे रहता, मानसिक सेवा जाती धीरे धीरे। क्यों, इसमें एक उदाहरण दिया जाता है कि प्रभुपाद के मतलब पाश्चात्य देश में प्रभुपाद के एक शिष्य थे, वो दिन भर खेतों में अपना खेती करते रहते थे। सुबह जो निकलते थे जपा होने के बाद और शाम को सीधा लौटते थे, कुछ भागवतम क्लास अटेंड नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ उस दिन भर फिजिकल सेवा करते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मैराथन का समय था, बाहर निकल गए सब कोई पुस्तक वितरण करा, भाई आश्रम में कोई नहीं है। तो उस वक्त क्या किया, उस व्यक्ति को जो इंचार्ज थे उस मंदिर के, तो उन्होंने बुलाया, बोले कि आज का क्लास आप दे दीजिए। तो कहा कि वो बोले मैंने तो कभी भागवतम पढ़ा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ किया नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने कहा फिक्र मत करो, आप सिर्फ व्यासासन पे बैठ जाओ, बाकी सब भगवान देख लेंगे। तो भरोसा करके उस पे ऑथोरिटी पे भरोसा कर पे व्यासासन पे बैठ गए। लेकिन जैसे व्यासासन पे बैठे उस वक्त उन्होंने ना वो क्लास इतनी देने, इतने सुंदर क्लास दिया और ऐसे देते गए कि उन्हें रोकना पड़ा बाद में कि बस करो हो गया समय, और जा और ज्यादा मत बोलो। तो इस तरह होने के बाद ये है एक उदाहरण, हम जितनी भी सेवा प्रेममय सेवा अगर अच्छे से सेवा करते जाएंगे ना, हमने ग्रंथ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ पढ़ने उतना तक ही हमें पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें जान सके हम कौन है, भगवान कौन है, और भगवान के साथ हमारा संबंध कैसे, शुद्ध संबंध हम भगवान के साथ कैसे स्थापित करना चाहिए, उसलिए हमें ज्ञान उतना होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि चार किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे भगवद्गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत और भक्तिनाथ सिंधु, ये चार ही किताब पढ़ लो आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन इस तरह दे दिया, तो यही कारण है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फिजिकल सेवा करनी चाहिए। अगर हम फिजिकल सेवा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, हमारा मन विचलित नहीं होगा, तो मेंटल स्तर पे मन भी स्थिर रहेगा। क्योंकि अगर शरीर ढीला होगा तो मन भी विचलित होगा। बोले ना एम्प्टी माइंड्स इज डेविल्ड वर्कशॉप, बोले मन खाली रहेगा तो शैतान का घर है। इसी तरह अभी जब तक हमारे शरीर में ताकत, उतना हमें फिजिकल सेवा करते ही रहना चाहिए। तो अगर हम ये सोचेंगे कि मैं बहुत ऐसा बहुत सेवा कर ली, अगर हम जैसे सत्यव्रत राजा ने ये कहा, सोचने लगा कि मैं भगवान उस जीव को सहारा दे रहा हूं कि जिससे वो आगे आगे बढ़ता जाए, मेरे कारण उस जीव को सपोर्ट मिल रहा है जिससे आगे बढ़ता जाए। लेकिन भगवान और भक्त, भगवान भक्त की दशा को और उस स्थिति को देखकर भगवान उस वक्त उसके साथ आदान प्रदान करते। अगर हम ये सोच लेंगे कि इतनी सेवा करेंगे, ज्यादा नहीं करते, जितका जमता तितका करूं, जास्त केला की ढोकला चेरेला हान होती, ये एकदम गड़बड़ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे राजा सोच रहा था, जैसे मैंने कहा भगवान बड़े से धीरे धीरे बड़े पात्र में गए, तो ऐसे क्यों जीव जितनी भी कोशिश करेगा सेवा करते समय, जीव जितनी भी कोशिश करेगा वो कम ही है। क्योंकि जीव को भक्त मतलब क्या, उसे जानना चाहिए भगवान कौन है और भगवान की स्थिति क्या है और जीव की स्थिति क्या है। क्योंकि जीव कितनी भी स्तुति सेवा करते जाएगा, वो सेवा में गड़बड़ करने ही वाला है, गलती करेगा ही, क्योंकि भगवान असीमित है और जीव सीमित है। तो इसके लिए जीव को हमेशा वो भगवान को तृप्त कभी नहीं कर सकता, तुप तो दूर की बात रही, वो सेवा ढंग से नहीं कर पाता है। क्योंकि हर क्षण में हर कोई भी सेवा रहे दो उसमें गलती तो रहती है। क्षमा कीजिए जो धर्म में, ये मेरे बारे में बोल रहा है, बाकी लोगों के बारे में नहीं है। तो ये ऐसे वो गलती करते रहता है। तो इससे क्या है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान की सेवा अच्छे से, जीव क्यों नहीं पूरी तरह सेवा करता, अच्छे से बिना अपराध से सेवा करता, क्योंकि उसमें चार दोष पाए जाते। अभी चार दोष के आपको पता ही होगा, ठीक है, जैसे गलती करना, भ्रमित होना, अपूर्ण इंद्रिया, या फिर दूर का वो देख नहीं पाना, दूसरे एरिया में क्या है वो देख नहीं पाना, इस तरह के चार दोष रहते हैं। ये चार दोष के कारण जीव क्या करता है, वो पूरी तरह सेवा नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण भावना भावत में, भावना में, इस्कॉन में हम ना सिर्फ कृपा पर आधारित हैं, हमारे इससे हमारे प्रयत्न से हम भक्ति भगवद्धाम नहीं जा सकते, शुद्ध भक्ति हमें नहीं मिल सकती। जब तक हम हमें कृपा कोई करेगा नहीं, हम पर कृपा कोई करेगा नहीं, तब तक हम भगवद्धाम जा ही जा सकते। तो अभी सोचिए, अभी एक शुद्ध हम कितने सालों से 16 माला करते आ रहे हैं, तो कहते कि एक शुद्ध हरि नाम भगवद्धाम ले जा सकता है। लेकिन इसी तरह अभी एक शुद्ध हरि नाम लेने के लिए हमें कितने समय, कितनी उम्र और कितने जन्म निकल जाएंगे एक शुद्ध हरि नाम लेने के लिए। उसी तरह सेवा में परफेक्ट होने के लिए हमें निरंतर सेवा करते रहना चाहिए, जिससे कि हम एक दिन एक परफेक्ट हो जाएंगे। जब तक हम परफेक्ट नहीं होते भगवान, तब तक हमें उस तरह आदान प्रदान हमारे साथ नहीं करेंगे जितना जैसे वो शुद्ध भक्त के साथ आदान प्रदान करते। इस वक्त हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते कि जितना वो अपने एक शुद्ध भक्त के साथ करते हैं। अभी सोचे कोई बोलेगा कि ये तो बी अ प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल मतलब रहो, मतलब क्या है कि जितना जमता है उतना जो मुमकिन है उतना ही करो। अभी सोचिए, हम अगर प्रैक्टिकल रहना चाहें तो भक्ति कर पाएंगे क्या? एक उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर सपोज प्रभुपाद 70 साल की उम्र में न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में गए और टॉम्पकिन स्क्वायर पार्क में जाकर बैठकर पेड़ के नीचे बैठ 70 साल का बुढ़ा व्यक्ति बैठ के कीर्तन करता है, और कीर्तन करने के बाद भी वो पूरी इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है, तो सोचिए एक 70 साल का व्यक्ति की स्थिति क्या होती है उस वक्त। और वो अकेला जाकर अनजान शहर में, अनजान देश में जाकर एक पेड़ के नीचे कीर्तन करता है, तो मतलब क्या, वो एक्स्ट्रा एंडेवर कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रा कोशिश कर रहा है, जिससे क्या होता है कि भगवान भी देखते कि ये भक्त जो है ये कितना प्रयत्न कर रहा है। बोलते हैं ज्यादा प्रयत्न करोगे, जितना पूरी अपने आप को समर्पण करके जितना प्रयत्न करोगे ना, भगवान उतना ही करीब आएंगे हमारे, उतना ही हमें देखेंगे। तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न कर, अगर हम प्रभुपाद ने ज्यादा प्रयत्न नहीं किया रहता उस वक्त, तो उस वक्त सोचो इस्कॉन की स्थापना नहीं, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं होता, कृष्णा भावनामृत संघ इस्कॉन, तो सोचे हम किधर होते उस वक्त अगर प्रभुपाद ने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिए रहते। तो इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि हम पर निर्भर करता है कि भगवान अपनी लीला अपने तरीके से हमारे जीवन में करें, भगवान अपनी लीला अपने तरीके से हमारे जीवन में करें, या हमारे तरीके से हम चाहें कि भगवान हमारे जीवन में लीला करें, ये आप पर निर्भर करता है। तो इसी तरह राजा, इस तरह हम देखते हैं कि राजा कितना प्रयत्न कर रहा था कि मछली को इससे इससे करते करते बड़े बड़े पात्र में दे ले। इसलिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारी हमें जब भी सेवा, राजा प्रयत्न कर रहा था हमेशा, और छोड़ नहीं गया, आखिर छोड़ा नहीं, ये तू जा तेरे को जो करना कर दे, तुझे ये पात्र मिला इससे बड़ा मेरे पास नहीं है महल में, ऐसा राजा ने कहा नहीं। वो क्या, अपने कैपेसिटी से बाहर जाकर उन्होंने पूरा प्रयत्न किया राजा ने, क्योंकि एक भक्त का यही एक लक्षण है, वो पूरा सेवा पूरा इससे पूरा एकदम जी जान लगा देता हूं पूरा सेवा करने के लिए। अभी एक सोचिए कि एक व्यक्ति को, अभी एक साधारण व्यक्ति है, अगर उसे 1 BHK 2 BHK लेना, उसकी पेमेंट नहीं होती, अगर लेना जरूरी है, घर में से फोर्स आ रहा है नहीं हमें घर लेना चाहिए, छोटा पड़ रहा है, तो व्यक्ति की उतनी पेमेंट नहीं है, वो बैंक से लोन लेता है, एन कैन प्रकार नहीं, बैक सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं, लोन लेता है और वो कार्य करते, तो सोचिए वो व्यक्ति कितना एफर्ट लगाएगा वो लोन को चुकाने के लिए, वो एक्स्ट्रा एफर्ट देगा ना वो लोन को चुकाने के लिए। इसी तरह हमें भक्ति में भी उसी तरह करना चाहिए, ये जो थोड़ा कर लिया चलता है फिजिकली, मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, हमें इम्प्रैक्टिकल होकर प्रैक्टिकल काम करना चाहिए। तो इसलिए समझा, मतलब हमारे हमारे हद के बाहर होकर हमें वो करना चाहिए, तभी वो व्यक्ति जाके अपना 1 BHK या 2 BHK खरीद पाएगा। अगर वो बोलेगा नहीं जानते करेंगे, वो बैंक वाले आएंगे, जो भी आएंगे उठा के चले जाएंगे सब कुछ। तो इसी तरह अगर हमें भगवत धाम जाना है तो हमें इम्प्रैक्टिकल होकर प्रैक्टिकल काम करना चाहिए। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए हमेशा कि अगर भगवत धाम जाना है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, कितना प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ा यही सोचिए कि अभी टाटा बिरला जो है, वो टाटा बिरला बनने के लिए व्यक्ति को कितनी मेहनत करके उस स्तर पे आना चाहिए, आए। अभी सोचिए हमें भगवद्धाम जाना है, यह तो भौतिक स्थिति हो गई, हमें भगवतधाम जाना है, भगवतधाम किधर, उसके बारे में भक्तों को तो पता है भगवतधाम क्या है, कैसे है, कैसे जाना है, तो हमें कितना एफर्ट भक्ति में लगाना पड़ेगा। तो इससे आप ही जान सकते हैं कि हमें कितना प्रयत्न करना पड़ेगा भक्ति में कि ताकि हम भगवतधाम जाएं। क्योंकि अगर हम ऐसे छोटे मोटे, हम छोटे मोटे कारण देंगे, सब ऐसे कारण बताते जाएंगे, तो भगवान बोलेंगे तू इसी इधर ही रहे, जीव अपने शरीर बदलते रहे, सब इधर ही करे करे, जितना भक्त ऐसे करोड़ों जन्म लग जाएंगे, लाखों करोड़ों जन्म लग जाएंगे भगवतधाम जाने के लिए। इसलिए अगर जिस जीव को इच्छा है भगवतधाम जाने की, उससे मतलब अपने कंफर्ट जोन से, जैसे बोलते हैं आरामदायक स्थिति से होकर पूरा एफर्ट करना चाहिए जिससे कि वो भगवतधाम जा सके। और इसके इस पर निर्भर करता, अभी ये भगवतधाम जाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे हमारे मतलब हमारे प्रयत्न से तो हम जाते जाने से रहे। तो इसलिए प्रभुपाद जो हमें कहते हैं, जो हमारे आचार्य कहते हैं, हमें गुरु महाराज जो प्रभुपाद हमें जो कहते हैं कि उतना ही करो। प्रभुपाद ने कहा ना, प्रभुपाद ने एक बार क्या कहा कि अपने शिष्य को कि जो 100% शुद्ध हो जाएगा वो भगवतधाम जाएगा। तो सामने सन्या उनके शिष्य सन्यासी शिष्य सब बैठे, सबकी मुंडी नीचे। प्रभुपाद ने बोला गए, तो फिर दोबारा बोले ठीक 80%, फिर भी सबकी मुंडी नीचे। तो प्रभुपाद ने कहा 60%, 50 से 60% बोले, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उतना बोला 60% बोला प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद ने फिर भी थोड़ा नीचे करे, प्रभुपाद ने बोले इससे नीचे मैं उतरने वाला नहीं। 64 माला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था 64 माला करो, लेकिन प्रभुपाद इतने कृपालु है कि हमें कहा कि 16 माला ही करना है। किसी भक्त ने पूछा प्रभु जी प्रभुपाद 16 माला से कम नहीं करते? 16 माला ही करना, उससे कम नहीं। तो जब तक फिर प्रभुपाद ने कहा आगे का छोड़ दो, आप 4 नियम 16 माला जप करो, मैं आपको पीछे के दरवाजे से, मेरी धोती पकड़ के रखो, पीछे के दरवाजे से मैं आपको भगवतधाम लेके जाऊं। ये है आचार्यों की कृपा। आचार्य हमें क्या करते हैं, हमें छूट देते हैं, हमें तरीका बताते हैं, सिर्फ उस तरीकों को हमें फॉलो करना है। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो उनकी कृपा से हम भगवतधाम जाएंगे। हमारी कृपा से क्या, हमें ढंग से रहने नहीं आता, ढंग से खाने पीने नहीं आता है, तो भगवतधाम जाने के तो सोच लिए कहां है, हमारी नैया तो डूब गई। अगर भगवान इस समय अगर प्रैक्टिकल, हम सोचेंगे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करना है, अगर भगवान प्रैक्टिकल हो गए तो सोचो क्या हम भगवतधाम जा सकते हैं? भगवान बोलेंगे नहीं, इसको इतना ही रहने दो। क्योंकि भगवान हर ब्रह्मा जी के हर एक दिन में हमेशा अवतार लेते रहते हैं, किसी ने कभी भक्तों को भेजते हैं, कभी खुद आते हैं, कभी आंशिक शक्ति ऐसे भेजते हैं, मतलब भगवान का प्रयत्न हमें, भगवान के अगर समय के हिसाब से देखे जाए, भगवान के 24 घंटे के में भगवान हर क्षण प्रयत्न करते रहते हैं किसी ना किसी, क्योंकि ये भौतिक जगत 1/4 है और आध्यात्मिक जगत 3/4 है। अभी सोचिए 100 रुपए में से 20-25 रुपए किसके ज्यादा नुकसान हो गए, तो व्यक्ति ज्यादा सोचेगा नहीं। इसी तरह भगवान भी, अगर 1/4 ये भौतिक दुनिया जो है अगर चली भी गई तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सेवा करने के हजारों करोड़ों शुद्ध भक्त है उनके पास। तो लेकिन हमारे लिए भगवान इस पृथ्वी पे आते हैं, ऐसे अलग अलग अवतार लेते, कश्यप का अवतार लिया, अभी ये मछली का लिया, फिर अलग अलग अवतार किसके लिए लेते हैं? हमारे लिए। तो हमारे तरफ से हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किस तरह भगवान को प्राप्त करने के लिए किस तरह हमें प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्णा। अभी कोई प्रश्न विश्न नहीं, तो अभी भक्ति इनका श्री वृंदान दास ठाकुर इनका तिरोभाव है, तो उसके ऊपर हम 2 मिनट में कुछ बोलने के प्रयत्न करूंगा। वृंदावन दास ठाकुर कौन थे? उनकी माता का नाम था नारायणी। ये वही नारायणी है जो जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं उनके घर में, मतलब श्रीवास ठाकुर जी के घर में आते हैं, तो ये 4 साल की बालिकी रहती है। तो उस वक्त चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नारायणी को, 4 साल की बच्ची रहती है, बोले कि आप नाम लो, भगवान का नाम लो, कृष्ण कृष्ण बोलो। तो नारायणी तुरंत बोलने लगती है। क्यों बोलने लगती है? क्योंकि भगवान का उच्चिष्ट उन्हें प्राप्त हुआ रहता। तो यही नारायणी आगे जाके उनके पुत्र होते हैं वृंदावन दास ठाकुर। अभी वृंदावन ठाकुर के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। नारायणी देवी के पुत्र ये वृंदा, मैं पढ़ के बताता हूं, के प्रतरुंदन दास ठाकुर है, उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। जैसे कृष्ण लीला में जो श्रीमद भागवत है उन्होंने व्यासदेव ने लिखा, ऐसे ही गौर लीला में ये चैतन्य भागवत गौर लीला है, ये वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा। और ये गौर सुंदर के स्नेह के पात्र थे। जैसे महाप्रभु के ये कृपा प्रसाद के प्रभाव से व्यास के अवतार श्री वृंदावन दास के जन्म ग्रहण किया, मतलब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन्होंने ये वृंदावन दास ठाकुर के रूप में इन्होंने जन्म किया। और ये गौर नित्यानंद प्रभु के प्राण स्वरूप है और ये नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य थे वृंदावन दास ठाकुर। और ये वृंदावन दास ठाकुर अपने पिता का परिचय नहीं दिया है क्योंकि प्रत्येक स्थान में केवल अपनी माता नारायणी देवी है उनके बारे में ही बताया। और फिर बाद में जैसे चैतन्य भागवत में की भूमिका में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने लिखा है, उन्होंने श्रीमती मालिनी देवी के पिता के घर पर पति गृह प्राप्त किया था। और वृंदावन दास ठाकुर अपने पौगंड अवस्था में, मतलब 10-15 साल की उम्र में, उन्होंने उनका वहीं पालन लालन हुआ। तो फिर बाद में अकेले वे अनेक तीर्थों में खोज बिना करके पता चला कि मामगच्छी के निकट वे किसी गांव में नारायणी देवी का विवाह हुआ था। मामगच्छी में के निकट किसी गांव में नारायणी का विवाह हुआ था ऐसे बताया गया है। और वे गर्भवती रहते हुए भी उनके विधवा हो गई, मतलब जैसे वृंदावन दास ठाकुर माता के गर्भ में थे उस वक्त ही वो विधवा हो गई थी। और फिर बाद में वो निर्धन ब्राह्मण के घर पर अभाव की स्थिति होने पर उन्होंने श्री वासुदेव दत्त ठाकुर के घर पर काम करना आरंभ किया, मतलब माता जी ने, नारायणी देवी जी ने वासुदेव दत्त के घर में काम करना आरंभ किया। वहीं पर वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ और वहीं पर उन्होंने अपना अध्ययन किया, मतलब उनके घर में रहते ही उन्होंने उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपना अध्ययन भी उधर ही किया। गौर सुंदर के संन्यास ग्रहण के 4 वत्सरों के उपरांत श्री वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ था। और जिस समय महाप्रभु अप्रकट हुए उस समय श्री वृंदावन दास ठाकुर की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं थी, मतलब जिस समय चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया उस वक्त वृंदावन दास ठाकुर इनकी आयु सिर्फ 20 वर्ष की थी। उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से दीक्षा आदि ग्रहण की थी, वे नित्यानंद के अंतिम शिष्य थे। सर्वश्रेष्ठ मृतक श्री वृंदावन दास ठाकुर जानवा माता के साथ खेती ग्राम में महोत्सव में गए थे। जब ही जानवी देवी उन्होंने खेती ग्राम में एक बड़ा उत्सव किया था उस वक्त वृंदावन दास ठाकुर वहां गए थे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वृंदावन दास ठाकुर की महिमा का विशेष रूप से वर्णन किया है। जैसे भागवत में कृष्ण लीला का वर्णन वेद व्यास ने किया है वैसे चैतन्य लीला का व्यास वृंदावन दास है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि वृंदावन दास, जैसे कृष्ण लीला में व्यासदेव ने भागवत के रचित किया है उसी तरह चैतन्य लीला का ये वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। वृंदावन दास चैतन्य लीला की रचना किए जिसके सुनते ही समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। जो भी चैतन्य लीला सुनता है उसके सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। और उस चैतन्य भागवत के द्वारा चैतन्य निताई की महिमा को जानकर कृष्ण भक्ति सिद्धांत की सीमा को भी जाना जा सकता है, मतलब जो भी चैतन्य लीला पढ़ता है, जैसे चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत जो भी पढ़ता है तो भक्ति चैतन्य लीला की सीमा क्या है, मतलब उनका अंत क्या है वो जान सकता है उनकी लीलाओं से। भागवत में जिनके जितने भक्ति सिद्धांत का सार है उस सब को जानकर उन्होंने लिखा है कि यदि कोई पाखंडी चैतन्य मंगल को सुनता है तो वह भी उसी क्षण महावैष्णव हो जाता है। अभी सोचिए चैतन्य लीला इतना पावरफुल है कि अगर कोई पाखंडी नास्तिक भी सुनता हो चैतन्य लीला तो भी महावैष्णव हो सकता है। वस्तुतः इस प्रकार का ग्रंथ कभी मानव के द्वारा रचित नहीं हो सकता। वस्तुतः वृंदावन दास ठाकुर के मुख से वक्ता तो स्वयं श्री चैतन्य ही है। रुंदन दास ठाकुर चरणों में हम करोड़ों करोड़ों प्रणाम करते हैं, क्योंकि अगर रुंदन दास ठाकुर जी नहीं होते तो कि हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, अगर अगर वेद व्यास जी भी नहीं होते तो हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में ज्ञान नहीं मिलता, उनके बारे में पता नहीं चलता। तो इसलिए हमें हमेशा व्यास जी से, इसे कहते हैं ना व्यासपीठ कहा जाता है, और इसी से हमें इनके हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि इन्होंने जो हमें आभार प्रकट करना चाहिए उन पे ताकि उन्होंने हमें ये कृष्ण लीला, ये जो चैतन्य लीला दी है उससे हमें आभार प्रकट करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उतनी बुद्धि दे कि जिससे कि हम ये चैतन्य लीला और ये चैतन्य भागवत ये और कृष्ण लीला जो भी है हमें उसे समझ पाए। हरे कृष्ण। अब जिसको कोई प्रश्न होगा भागवत के उसके ऊपर पूछ सकते हैं। बोलते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करते रहना, सेवा करते रहने चाहिए। अभी जब में हमारा ध्यान नहीं लगता तो हम जब क्यों करते, छोड़ नहीं देते ना माला, जब करते रहते ना, इसलिए जब तक भाव नहीं आता हमें सेवा करते रहने चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हम एक कठपुतली की तरह, हमें कार्य क्या है कि हमें करते ही रहना है, वो भगवान के ऊपर निर्भर है हमें कृपा कब करेंगे। इसलिए हम ये नहीं, कभी निराश नहीं होना चाहिए व्यक्ति को कि मेरे से सेवा नहीं होते, अपराध होते, अपराध तो होंगे, बद्ध जीव मतलब किसको बोलता जाता है, अपराध करेगा वो, लेकिन भगवान क्या देखते हैं, प्रयत्न देखते हैं, उसका भावना देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तुमने किस तरह क्या सेवा पूर्ण की अपूर्ण की, भगवान देव पूर्ण एक्चुअली साधक के सर पर हमें पूर्ण सेवा करनी चाहिए, नहीं मेरा भाव बहुत अच्छा मैंने इतनी सेवा करके छोड़ दिया, क्यों मेरा भाव बहुत अच्छा, भाव हम नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि हमारे आचार्य भगवान ही डिसाइड करते हैं कौन से स्तर पे आके, तो उस वक्त भगवान हमें आके मदद कर, जैसे ये राजा प्रिय ये सत्यवत राजा, उसके प्रयत्न किया ना उसने पूरा आखिरी तक, उन्हें छोड़ नहीं दिया ना कि नहीं इतना आ गया मैं कर नहीं सकता, प्रयत्न किया भगवान ने आके उस साथ आदान प्रदान किया। उसी तरह हमें सेवा करते कठिनाइयां आएंगी, जब तक ये शरीर है जीवन में कठिनाई अगणित कठिनाई आएंगी, लेकिन कहते हैं ना मैं कहा ना कि हमें हमारी शक्ति से बाहर प्रयत्न करना चाहिए, तभी संभव हो सकता है कि भगवान हम पे आचार्य हम पे कृपा कर पाए, नहीं तो अगर ऐसे हम छोड़ देंगे नहीं होता है, हताश होके बढ़ जाएंगे तो हताशे ही रह जाएंगे। वो मराठी में बोलते ना मठ, वो क्या बोलते वो आलसी को क्या बोलते मठ, वो ऐसे हो जाएंगे, फिर भगवान भी बोलते तुम मठ ही रहे, प्रयत्न ही हमारा करना काम है, आगे भगवान पे छोड़ देना। ओके और किसी कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।